भागवत सार की श्रृंखला में चौथा स्कंद चल रहा है, तो आज चौथे अध्याय पर चर्चा है। इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा विरराम शंकर पत्न्यंगनाशं युभयत्र चिन्तयन्। सुदृदृदश्रु परिशंकिता भवा निष्क्रामति निर्विशति द्विधाससा। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा विरराम शंकर पत्न्यंगनाशं युभयत्र चिन्तयन्। सुहृद् दिग्दक्षु परिशंकिता भवान् निष्क्रामति निर्विशति दिघाससा। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा विरराम शंकर पत्न्यंगनाशं युभयत्र चिन्तयन्। सुहृद् दिदक्षु परिशंकिता भवान् निष्क्रामति निर्विशति द्विधाससा। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, एतावत् इतना, उक्त्वा कहकर विरराम शांत हो गए। शंकरः भगवान शिव पत्नी अंगनाशं, आप लोग थोड़ा जोर से बोलिए ताकि आंखें बंद नहीं हों। तो दोहराइए, जोर से दोहराइए, पत्नी अंगनाशम। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा था पता नहीं हम अकेले बैठे हैं। अपनी पत्नी के शरीर का विनाश ही चूंकि उभयत्र दोनों प्रकार से चिंतयन सोचते हुए सुहृद दिदक्षु अपने संबंधियों की देखने की इच्छा परिशंकिता भयभीत भवा शिव से निष्क्रामती बाहर आती निर्विशति भीतर जाती द्विधा दुचित्ती आस थी सा वह अर्थात सती। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। मैत्री मुनि ने कहा, सती को असमंजस में पाकर शिवजी यह कहकर शांत हो गए। सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने के लिए अत्याधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिवजी की चेतावनी से भयभीत थी। मन अस्थिर होने से वह हिंडोले की भांति कक्ष से बाहर और भीतर आ जा रही थी। तात्पर्य, सती का मन दुविधा में था कि वह पिता के घर जाए या शिवजी के आदेश का पालन करे। यह द्वंद्व इतना प्रबल था कि वह कभी कमरे के बाहर आती तो कभी भीतर जाती। उसकी गति घड़ी के पेंडुलम जैसी हो रही थी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्रातिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेरणारत कंठ योस्पुरा कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे सती ने प्रयास किया अपने पति को शिव जी को ये समझाने का कि हमें जाना चाहिए, भले ही निमंत्रण नहीं मिला है, भूल गए होंगे, इतने व्यस्त रहे होंगे इतने बड़े यज्ञ करने में। और फिर जैसे उन्होंने बताया कि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, हमें बिना बताए हम जा सकते हैं, बिना आमंत्रण के हम जा सकते हैं, और कई कारण उन्होंने दिए। फिर शिव जी ने उसका उत्तर भी दिया और शिव जी ने स्पष्ट कह दिया कि वे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत द्वेष करते हैं और द्वेष के कारण अपराध होगा। दरअसल शिवजी क्यों नहीं जाना चाहते थे, इसलिए नहीं कि उनको कोई द्वेष था कि ये व्यक्ति मुझसे द्वेष करता है मैं नहीं जाऊंगा। अगर किसी कोई द्वेष भी करता है तो शिवजी जैसे वैष्णव को तो जाना चाहिए, उन्हें क्यों द्वेष करना चाहिए। तो वो इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि अगर द्वेष के कारण फिर वो अपराध करेगा और अपराध के कारण उसका पतन होगा, क्योंकि शिवजी वैष्णव हैं, वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, तो उनके प्रति अगर वो अपराध कर बैठेगा तो फिर उसका पतन हो जाएगा। तो दक्ष को पतन से बचाने के लिए शिवजी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सती देवी इस बात को समझ नहीं रही थी। सती देवी सोच रही थी कि ये घृणा करते हैं, ये द्वेष करते हैं, मेरे पिता के घर जाना नहीं चाहते हैं इत्यादि। तो कितना अच्छा भाव था शिव जी का कि वो इसलिए नहीं जा रहे थे कि द्वेष कर रहे थे, बल्कि उसको पतन से बचाने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस व्यक्ति ने द्वेष के कारण अपराध कर दिया मेरे प्रति तो फिर इसका नाश होगा। और वही हुआ, शिव जी जो नहीं चाहते थे सती देवी के प्रति अपराध कर दिया दक्ष ने और फिर नाश हुआ। तो ये वैष्णव का भाव है, इसलिए हम लोग को कहा जाता है कि वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। वैष्णवों के कार्यों को समझना बहुत कठिन है। यहां सती देवी उनकी पत्नी होकर भी समझ नहीं पा रही हैं कि शिवजी क्यों नहीं जाना चाहते, जबकि शिवजी ने कहा कि मैं द्वेष नहीं करता हूं। तो इसीलिए वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। वैष्णव को हमें उसके कार्यों से उसको समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे कई इतिहास में उदाहरण हैं जहां वैष्णवों ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो देखने में बड़े निंदनीय लगते हैं, लेकिन जब उसका फल आता है तो पता चलता है कि ये जो किया ये सही हुआ। ऐसे कई कार्य, कई आचार्यों ने ऐसे कार्य किए। एक तो आचार्य ने मंदिर बनाने के लिए चोरी भी करवाई। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग करवाएं, हम सोचे कि हमें भी मंदिर बनाने में पैसा कम पड़ रहा है, दो चार डाकुओं को, लुटेरों को हम लोग भी एम्प्लॉय कर देते हैं कुछ कमीशन देकर। नहीं, आचार्यों की स्थिति और अपनी स्थिति से तुलना नहीं करनी चाहिए। तो वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। तो वैष्णवों को क्रियाओं से बाहर के उनके शारीरिक लक्षणों से, शरीर की क्रियाओं से देखकर उनको नहीं पहचानना चाहिए, उनको आध्यात्मिक स्तर पर देखना चाहिए। उनकी भक्ति, उनका समर्पण कितना है कृष्ण के प्रति, ये उनको महान बनाता। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। वैष्णवों की महानता उनके शरीर से, उनके बाहरी कार्यों से, उनके धन से, उनकी संपत्ति से, उनके अन्य चीजों से नहीं है। वैष्णवों की महानता उनकी भक्ति से है, वैष्णवों की महानता उनके समर्पण से है। कितना उन्होंने समर्पण किया कृष्ण को, ये उन्हें महान बनाता। और जब हम उन्हीं वैष्णवों को बाहरी दृष्टि से देखने लगते हैं, जैसे दक्ष ने देखा कि ये शरीर पर राख लगाते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, कभी पागल की तरह घूमते हैं, हंसते हैं इत्यादि, तो फिर वो अपराध हुआ, क्योंकि वो समझ नहीं पाया शिवजी की स्थिति को। अगर शिवजी पागलों की तरह घूमते भी हैं, कभी जोर जोर से हंसते हैं, तो वो उतने भाव स्तर पर हैं, वो भाव विभोर होकर नाचते हैं, वो साधारण पागलों की तरह नहीं है। वैसे एक व्यक्ति को अगर सुखी रहना है इस जगत में तो पागल होना चाहिए, या तो भौतिक दृष्टि से पागल हो तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए, पागलों को आप कुछ भी बोल दीजिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पागल हो उसको कुछ पता ही नहीं हो, या फिर भक्ति में पागल हो, बस दो ही तरह के व्यक्ति सुखी रह सकते हैं इस जगत में, बाकी व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। तो या तो पागल सही में पागल हो व्यक्ति, हम लोग देखते हैं कुछ पागल लोग होते हैं, जैसे आप पागल खाने में जाइए या कोई पागल से मिलिए तो वो अपने आप को बड़ा सुखी मानता है, उसको कोई दुख नहीं है। हमें देखकर दुख होता है कि बेचारा कैसी स्थिति में है, अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहा है, अपने आप को राजा मान रहा है, भगवान मान, हमें दुख होता है देखकर, लेकिन उसे कोई दुख नहीं है, वो तो खुश है, वो आनंद में है। जैसे एक बार एक व्यक्ति पागल खाने गया तो देखा, डॉक्टर गए पागल खाने में, पूछ रहे डॉक्टर देखने के लिए राउंड पर गए कि क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि एक पागल नीचे बैठा हुआ कुछ कारपेंटर का काम कर रहा है, ऐसे कुछ है नहीं हाथ में, वो कुछ बना रहा है, और दूसरे को देखा तो वो दीवार पर चढ़ा हुआ है, लटका हुआ है छत पर। तो डॉक्टर ने पूछा, ये क्या कर रहे हो जो नीचे बैठा था, कि उससे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, देख नहीं रहे हो, मैं यहाँ पर कुछ फर्नीचर बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम फर्नीचर बना रहे हो? बोले हाँ। और ये तुम्हारा मित्र क्या कर रहा है ऊपर? बोला, वो पागल है, वो अपने आप को बल्ब समझकर ऊपर टंगा हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर वो पागल अपने आप को बल्ब समझकर टंगा हुआ है तो तुमने उसको नीचे क्यों नहीं उतारा? तो बोले, फिर रोशनी कैसे आएगी मेरे पास यहाँ पर काम करने के लिए? तो ये देखिए, वो लोग अपनी दुनिया में है, उनको कोई चिंता नहीं है। तो इसी तरह व्यक्ति को या तो सही में पागल रहे तो हो सकता है शायद खुश रहे, या फिर भक्ति में पागल हो। भक्ति में पागल होगा तो उसको कुछ लेना देना नहीं, शिव जी को क्या लेना देना, कौन उन्हें बोल रहा है कि राख लगाकर क्यों घूम रहे हो, इतने बड़े व्यक्ति हो, शिव जी को कुछ लेना देना नहीं। तो इसीलिए अपराध से बचना चाहिए। ये जो दक्ष का प्रसंग है, ये हमें अपराध से बचने की चेतावनी देता है, क्योंकि एक छोटा सा अपराध क्या हुआ था, शिवजी उठकर खड़े नहीं हुए थे, लेकिन उसका कहां तक कितना बड़ा विनाश हो गया कि सती देवी, अब इस अध्याय में हम देख रहे हैं सती द्वारा शरीर त्याग, सती देवी को जाना पड़ा, बहुत बड़ा विध्वंस हुआ, आगे चलकर दक्ष का भी गला कटेगा, क्या क्या नहीं हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसीलिए बहुत संभालना चाहिए। तो वैष्णवेर क्रिया मुद्रा, उनको उनकी क्रियाओं से नहीं जान लेना चाहिए कि अरे ये तो ऐसे करते हैं, ये तो वैसे करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग भक्ति में आने के बाद जब किसी वैष्णव के बहुत निकट आ जाते हैं तो हमें लगने लगता है कि अरे इनमें और हमें अंतर ही क्या है, ये भी तो वही है, वही खाते हैं, वही पीते हैं, वही सोते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत ज्ञान ज्यादा होगा, और क्या हो सकता है, थोड़ा 10 साल पहले आ गए मेरे से भक्ति में, और क्या हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वैष्णव को ऐसे नहीं देखना चाहिए। तो इस श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि सती देवी भी जब भाव को नहीं समझ पाए, तो शिव जी का कितना करुणामय भाव था कि वो उनसे दूर इसलिए रह रहे थे कि वो अपराध नहीं करें दक्ष, इसलिए गए नहीं, क्योंकि जानते थे सती के जाने पर इतना कुछ हुआ, मान लीजिए शिवजी चले जाते बिना आमंत्रण के तो पता नहीं क्या हो जाता, दक्ष क्या कर बैठता। तो सती देवी, अब पहले 5 श्लोकों में हम लोग देखते हैं कि सती देवी चिंतन करती हैं और चली जाती हैं, उनको जाना ही है। तो यहां श्लोक में वो अंदर बाहर आ रही हैं। अंदर बाहर क्यों? उन्होंने मन बनाया, बस मैं जा रही हूं, चली गई बाहर दरवाजे के, फिर जाके याद आया शिव जी ने चेतावनी दी है, उनका अपमान हो जाएगा, उन्होंने कहा है कि अगर जाओगी तो मृत्यु हो जाएगी, फिर वापस आ जाती है अंदर, और फिर सोचती नहीं नहीं नहीं, मेरे पिता मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पिता हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे संबंधी हैं, फिर बाहर चली जाती है। यही लिखा अंदर बाहर। अब देखते हैं ना, कभी कोई व्यक्ति बड़े गुस्से में होता है तो फिर वो अंदर बाहर करने लगता है। आप लोगों को घर में अनुभव होगा, हम लोगों को तो नहीं है, मंदिर बहुत बड़ा है, अंदर बाहर नहीं होता है। तो आप लोगों को घर में अनुभव होगा, पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, पत्नी को मना किया जाता है नहीं जाओ, और उसको जबरदस्ती जाना है, अंदर वो चलने लगती है ऐसे तेज, या पति चलने लगता है इधर उधर, तो ऐसी सती देवी भी चल रही अंदर बाहर, बाहर जाती है कि बस बाहर जाके याद आता है नहीं 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 कहीं कुछ हो नहीं जाए, फिर अंदर आती, फिर अंदर है नहीं ये जाना ही है, फिर बाहर, तो अंदर बाहर पैर पटकते हुए बड़ी बड़े गुस्से में सती देवी घूम रही हैं। और अंत में उन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे जाना ही है, और वो चल गई। और ऐसा वर्णन है कि उन्होंने पहले गुस्से में शिव जी को देखा, बड़े क्रोध में, तो क्रोध क्यों आया, क्योंकि शिव जी सबके लिए समान है, तो सती देवी सोच रही थी कि सबके लिए समान है लेकिन अपनी पत्नी के लिए समान नहीं है, तो इसलिए सती देवी बड़े क्रोध में शिव जी को देख रही, मानो जलाकर राख कर देंगी, तो ऐसे चलने लगी। और प्रभुपाद लिखते हैं अंत में वो रोने भी लगी, अभी गई नहीं थी तो रोने भी लगी, उनकी आंखों से आंसू आ गए कि अब कम से कम शिव जी वैसे नहीं मान रहे, तो रोते हुए देख के कहे अच्छा ठीक है ठीक है रो मत चलो जा। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये स्त्रियां अंतिम अस्त्र पत्नियां ऐसे करती हैं कि जब पति नहीं मानते हैं तो फिर ठीक है रोना धोना शुरू कर देते हैं, तो पति कहते ठीक है रो मत चलो जाएंगे, है ना। ये आप सबका अनुभव ज्यादा होगा, हम तो केवल जो प्रभुपाद ने लिखा है उसको बता रहे हैं। तो ऐसे वो रोने लगी, और फिर अंत में देखा कि जब रोने का भी प्रभाव नहीं हो रहा है, शिव जी आराम से बैठे, शिव जी को कोई चिंता, क्योंकि शिव जी ने जान लिया था कि मुझे जाना ही नहीं है, जाऊंगा तो वहां विध्वंस होगा, तो शिव जी तो जाने वाले नहीं, और उनको भी मना कर रहे हैं। लेकिन देखिए शिव जी यहां पर कहा गया है कि पत्न्यंग नाशम, शिव जी जानते थे कि इसकी तो मृत्यु होगी ही, यहां लिखा है ना शब्द है अपनी पत्नी के शरीर का विनाश, तो वो जानते थे कि ये होना है, इसलिए वो ये जानते थे कि ये जाएंगे, लेकिन फिर भी उनका कर्तव्य था समझाना कि देखो ऐसा गलत होगा। हमारे जीवन में कई बार भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में हृदय से हमें कुछ चीजें करने के लिए रोकते हैं, हमारे हृदय में वो आता है कि देखो ये गलत है इसको ना करो, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं, और फिर करते हैं तो हमें फल भुगतना पड़ता है, और फिर हम भगवान को दोष देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सती देवी को मना कर रहे हैं, फिर भी सती देवी चली जाए, फिर उनकी मृत्यु हो, और फिर लोग कहें शिव जी ने रोका क्यों नहीं। तो इसीलिए शिव जी ने कहा जा, हालांकि जानते थे कि ये रुकेंगी नहीं, लेकिन शिव जी ने समझाया। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि भगवान सदैव हमें निर्देश देते रहते हैं। आप सबको अनुभव होगा, कभी कोई गलत काम करने जाते हैं, उनको बोलो उठकर खड़े हो जाए, यू कैन स्टैंड, यू आर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम फीलिंग स्लीपी। सो कभी हम लोग कहीं पर जाते हैं, जैसे कोई मना करते थे, हम लोग कोई गलत काम करने जा रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हृदय में आता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, इससे कुछ अनाश हो जाएगा, अनिष्ट होगा, नहीं करना, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं, हमारा लोभ इतना होता है कि हम उसको कर बैठते हैं, और फिर करने के बाद फिर सारा हमें भुगतना पड़ता है। तो यहां इस प्रसंग से ये सीखना चाहिए। तो सती देवी चली गई, उन्होंने कहा नहीं जा, और किसी को नहीं, अकेले चल दें, कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई गाड़ी निकालो, ड्राइवर कहाँ है, या जो भी साथ में जाना, रथ वगैरह हो, पालकी हो, कुछ नहीं, ऐसे ही चल दी। तो जब वो चल दी, अभी शिव जी ने कुछ नहीं कहा, शिव जी ने रोका नहीं, क्योंकि ऑल पहले ही बोल चुके हैं, अब कैसे रोकें। और जो शिव जी के अनुचर थे, उनको भी शिव जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वे जान गए शिव जी की इच्छा कि शिव जी चाहते हैं वो अकेली नहीं जाएं, तो तुरंत सारे कई अनुचर उनके साथ चल दिए। प्रभुपाद समझाते हैं अनुचर शब्द का अर्थ क्या होता है। अनुचर मतलब केवल जो उनका पालन करता है वो नहीं, प्रभुपाद कहते हैं अनुचर शब्द का अर्थ ये है कि वो व्यक्ति जो अपने स्वामी की इच्छाओं को जाने और वैसे कार्य करे, उसको अनुचर कहते हैं। जो सेवक होते हैं, उन सेवकों में कई श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी होती है जहां व्यक्ति को कहा जाता है तब वो आराम से उठ के कार्य करता है, एक वो श्रेणी है, यानी स्वामी को कहना पड़ता है उठो ये करो, तो बोलता है हाँ, धीरे से उठता है, जाता है, करता है। दूसरी श्रेणी है स्वामी के मुख से शब्द निकलते ही वो कार्य को कर देता है। तीसरी श्रेणी है जहां बिना कहे वो कार्य कर देता है स्वामी की इच्छा को जान के, उन्हें अनुचर कहते हैं। शिवजी ने कहा नहीं लेकिन सारे अनुचर उनके साथ में चले और एक बड़े अच्छी तरह से उनको लेकर गए, उनको बिठाया बैल के ऊपर, उनका आसन लगाया, पालकी लगाई उसमें बिठाकर, और बहुत गाजे बाजे के साथ, मतलब ऐसे कि सती देवी आ रही हैं, कोई साधारण स्त्री नहीं है, तो उसके साथ वो गए। तो ये पहले से पांचवें श्लोक में हम देखते हैं। छठे श्लोक से ग्यारहवें श्लोक तक सती देवी का कैसे वहां स्वागत हुआ या ना हुआ इसका वर्णन। अब सती देवी पहुंच गई अपने पिता के घर और स्वाभाविक है कि जो इतना लड़कर आ रही हैं अपने पति से कि मुझे जाना ही है, उनके मन में तो भाव होगा कि पिता मुझे देखते ही गले से लगा लेंगे, पिता मुझे देखते ही बहुत प्रेम देंगे, क्योंकि वैसे भी वो उनकी लाडली पुत्री थी, सबसे छोटी थी, इसीलिए पिता बहुत प्रेम करते थे। तो आशाएं बढ़ गई थी उनकी कि अब मैं इतना अपने पिता के लिए इतना झगड़ कर आ रही हूं अपने पति से, तो स्वाभाविक है पिता तो देखते ही भाग कर आएंगे और बहुत प्रेम करेंगे, सर पर हाथ फेरेंगे, बहुत अच्छा है, कैसी हो इत्यादि। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो पिता तो क्या, किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। सब डर रहे थे दक्ष से, क्योंकि सब जानते थे हाँ अगर पहले दक्ष चले जाते, थोड़ा उनको प्रेम कर लेते अपनी पुत्री की तरह, तो सब लोग आकर करते। लेकिन दक्ष ने किया नहीं, देखा भी नहीं सती देवी आई है, तो बाकी सब घबरा गए और उन्होंने सोचा हमें भी कुछ करना नहीं चाहिए, नहीं तो दक्ष का क्रोध हो जाएगा। केवल सती देवी की माता और उनकी बहनों ने उसका स्वागत किया, क्योंकि मां का हृदय बहुत कोमल होता है, पिता का नहीं होता, पिता का थोड़ा पत्थर की तरह होता है, लेकिन माँ का बड़ा कोमल हृदय होता, तो वो सहन नहीं कर पाए, वो रुक नहीं पाए। उनकी उनकी लड़की इतने समय बाद आई थी, क्योंकि काफी समय बीत गया था, कल हम लोग पढ़ रहे थे दीर्घ काल तक चला, तो जब पहली बार अपमान किया था तब से लेकर अब तक बहुत लंबा समय बीत गया था और सती देवी गई नहीं थी घर पे, तो माँ रुक नहीं पाई, बहनें रुक नहीं पाई, तो उन्होंने स्वागत किया, उसको बैठने का स्थान दिया, कुछ उपहार दिए। लेकिन सती ने जब देखा कि उनके पिता उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने वो सब जो मान था उसको स्वीकार नहीं किए, कोई उपहार स्वीकार नहीं किए, वो बैठी भी नहीं वहां पर, चली गई जहां पर पिता खड़े थे और देखा कि पिता ने फिर भी कुछ ध्यान नहीं दिए, बोले भी नहीं, कम से कम देख कर मुस्कुरा देते, कह देते कि भाई ठीक है बैठो, मैं बाद में बात करता हूं, अभी बड़ा व्यस्त हूं, इतना तो कह देते, देखा ही नहीं। और उसके बाद सती ने देखा कि सब देवताओं के लिए आहुतियां दी जा रही हैं, सबका भाग है, लेकिन शिव जी के लिए जो आहुति होनी चाहिए वो नहीं थी। ब्राह्मणों ने सारे मंत्र पढ़े लेकिन नमः शिवाय स्वाहा नहीं पढ़ा, अर्थात ये आहुति शिव जी के लिए है, नहीं पढ़ा, तो शिव जी को भाग नहीं मिला। तो ये देखकर वो बहुत क्रोधित हो गई। अब तक तो ठीक है उनका अपमान हो रहा था, लेकिन उनके पति का अपमान हुआ। एक पत्नी के लिए अपना अपमान वो सहन कर सकती है, लेकिन जब उसके सामने उसके पति का अपमान होता है तो वो सहन नहीं कर पाती। इसीलिए आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि पार्वती देवी ने महाराज चित्रकेतु को श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने शिव जी का अपमान किया उनके सामने, वो सहन नहीं कर पाए। तो यहां सती देवी सहन नहीं कर पाए कि पिता अपमान कर रहे हैं। दूसरा कारण यह भी था कि शिव जी महान वैष्णव हैं, तो वैष्णव के अपमान को सहन नहीं करना चाहिए। दोनों कारणों से, एक तो उनके पति थे वो, तो पति का अपमान पत्नी को सहन नहीं करना चाहिए, और दूसरा वो महान वैष्णव हैं, तो जब वैष्णव का अपमान होता है तो वो भी सहन नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों कारणों से सती देवी बड़े क्रोध में आ गई और उस समय उन्होंने दक्ष की निंदा प्रारंभ की। तो ग्यारहवें श्लोक से आगे वो दक्ष को कहने लगी। देखिए दक्ष की स्थिति को अगर हम लोग देखें तो जो दक्ष अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, सारी 16 पुत्रियों में से सबसे ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन आज सारा प्रेम चला गया। ये भौतिक जगत की आसक्ति और प्रेम है। इस सब का अनुभव हम इस जगत में करते हैं। हमें शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत प्रेम दिखाता है कोई, लेकिन फिर वही व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है। माँ बाप संतान को जन्म देते हैं, संतान बहुत प्रेम करती है, कितना प्रेम होता है, लड़का लड़का पैदा होता है, लोग खुशियां मनाते हैं, पार्टी देते हैं, लड्डू बांटते हैं, और लड़का बड़ा होता है तब तक बहुत प्रेम होता है, माँ बहुत प्रेम करती है, खाया नहीं खाया, क्या कर रहा है इत्यादि। लेकिन वो लड़का जब बड़ा हो जाता है तब तक बड़ा प्रेम करता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है, पत्नी से प्रेम होता है लगता है, और माता और पत्नी का ठीक से जमता नहीं या पिता का जमता नहीं, उठाकर बाहर कर देता है। बूढ़ा घर, आजकल हम लोगों ने भारत में भी बहुत जगह ये बूढ़ा घर खुल गए हैं। बूढ़ा घर मतलब कहने के लिए तो वृद्धाश्रम कहते हैं, बड़ा अच्छा नाम दिया है वृद्धाश्रम, लेकिन वो वृद्धाश्रम नहीं है, वो स्थान है जहां व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं अपनाकर, अपने प्रेम को ना दर्शाकर, अपनी कमजोरियों के कारण अपने माता पिता को उठाकर फेंक देता, उसे बूढ़ा घर कहते हैं। इसलिए उसको वृद्धाश्रम नहीं कहना चाहिए। आश्रम तो वहां होता है जहां भगवान की भक्ति होती है, तो वहां पर वो लोग रहते हैं। तो वही माता पिता जिनको बड़ा प्रेम दिखाता है बच्चा बचपन से, आप देखिए छोटा सा बच्चा होता है, उसको कोई भी मार दे तो भागकर माँ के पास आ जाता, माँ भी मारे तो भी माँ के पास ही जाता, बहुत प्रेम। लेकिन वही बड़ा होकर कष्ट का कारण बनता। कंस का उदाहरण, कितना प्रेम दिखला रहा था, सारे सारथियों के होते हुए भी उसने कहा नहीं, मैं अपनी बहन को लेकर जाऊंगा, मेरी बहन है, आज इसका विवाह है, मुझे कुछ करना है इसके लिए, खुद रथ चलाने लगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि इसका आठवां पुत्र मारने वाला है, तलवार निकाल ली। ये इस भौतिक जगत का प्रेम है। तो यहां दक्ष बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जहां द्वेष हो गया शिवजी से, सती से नहीं हुआ था, शिवजी से, तो सती का अपमान कर दिया। तो देखिए, जानिए, इस जगत में जब तक हम लोग प्रेम अपनी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर करेंगे, आशाओं के आधार पर करेंगे, हमें सदैव निराशा मिलेगी। लेकिन वही प्रेम हम भक्ति के आधार पर, कृष्ण के आधार पर, कृष्ण को केंद्र बनाकर करेंगे, भक्तों से करेंगे, जहां कोई शारीरिक संबंध की बात नहीं है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है। जरूरी नहीं है कि वो आपके शरीर से उत्पन्न हुआ होगा तभी आपसे प्रेम करेगा। अगर कृष्ण केंद्र है, अगर भक्ति केंद्र में है, तो वो प्रेम आपको सही आनंद प्रदान करेगा। इसीलिए प्रेम भक्तों से होना चाहिए, और उसका आधार कोई परिवार, कोई शरीर, कोई जो जाति नहीं होने चाहिए कि ये मेरी जाति का है, ये कारवार वाला है, इसको ज्यादा प्रेम करेंगे हम लोग। ऐसा होता है ना भक्तों में भी, कभी कभी हम यात्रा पे जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल जाता है तो पता चलता है कि कारवार, अरे कारवार के हैं, भक्त भी है, बहुत अच्छा, आइए आप हमारे साथ प्रसाद लीजिए, क्यों आप कारवार के हैं। दूसरा कोई मिल जाए, कहीं मैं अंडमान निकोबार का हूं, तो बोले आप वैसे भी आपको देश निकाला दिया गया है, आप बाहर ही रहो, हमारे सामने मत आओ। तो भक्तों में प्रेम शरीर, परिवार, समाज के आधार पर नहीं, जब तक जब वो रहेगा फिर तकलीफ होगी। भक्ति के आधार पर कृष्ण को केंद्र बनाकर करना चाहिए। तो इस भौतिक जगत का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति दूसरे की इंद्रिय तृप्ति में सहायता करता है तब तक प्रेम बना रहता है, जहां बाधा आती है तलवार निकल जाती है। इसीलिए सच्चा प्रेम कृष्ण प्रेम है, सच्चा प्रेम भगवान का प्रेम है। भगवान से प्रेम करने वाले भगवान कभी छोड़ते नहीं हैं, यह सच्चा प्रेम है। सुहृद सर्वभूतानाम, सच्चा प्रेम भगवान से, क्योंकि भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बार हम उनसे प्रेम करने लगे तो कभी कभी हमारे से गलती भी हो जाए तो भी भगवान पकड़ कर रखते हैं, छोड़ते नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा। भगवान तो उनको भी नहीं छोड़ते जो लोग भगवान को नकारते हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, विरोध करते हैं, भगवान उनकी भी चिंता करते हैं। तो फिर जो प्रेम करेंगे उनकी चिंता क्यों नहीं करेंगे भगवान। तो ऐसे सती देवी अब कहने लगी दक्ष को, दक्ष की निंदा करने लगी, और उन्होंने दक्ष से कहा, उस समय उनको बहुत गुस्सा आया था क्योंकि उनके पति का अपमान हुआ। तो उस समय उन्होंने दक्ष से कहना शुरू किया कि केवल आप जैसा व्यक्ति ही शिवजी जैसे व्यक्ति से द्वेष कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। शिवजी कौन है? अरे शिवजी साधु हैं, वो कहती हैं। साधु अर्थात जो गुणों को देखकर उसको गुणगान करते हैं, बहुत बड़ा उसको बढ़ा देते हैं गुणों को, एक गुण देखकर उसको बहुत गुणगान करते हैं, और ऐसे व्यक्ति से आप द्वेष करते हो। साधु, साधु भी साधुओं में कई श्रेणियां होती हैं। एक प्रकार के साधु होते हैं जो दुर्गुण नहीं देखते, गुणों को देखते हैं, ये एक प्रकार के साधु। जो दुर्गुण देखते हैं वो तो साधु कहे ही नहीं जाते हैं, इसलिए उनकी तुलना ही नहीं, हम उनकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम तो साधुओं की चर्चा कर रहे हैं जो साधु कहलाते हैं। तो एक प्रकार के साधु जो दुर्गुण को नहीं देखते, व्यक्ति के अंदर गुणों को देखते हैं, उन्हें साधु कहते हैं। उनसे अच्छे, उनसे श्रेष्ठ वो लोग हैं जो एक अच्छे गुण को देखकर फिर उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। तो ऐसे दूसरे प्रकार के साधु हैं कि जो गुणों को देखकर उसको बढ़ा देते हैं। वैसे उनसे पहले एक प्रकार के साधु और कहे गए हैं जो दोषों को देखते हैं। तो पहले प्रकार के साधु वो हैं जो दोषों को देखते हैं, लेकिन ये इस दृष्टि से कि कैसे इसके जो दोष हैं उसको गुण में बदल सके। साधु का ये भाव होता है, अगर वो दोष देखते हैं लेकिन ये सोचते हैं कि कैसे इस दोष को मैं गुण में बदल सकता, वो साधु। केवल दोष देखना वो साधु नहीं है कि दोष ही दोष देख रहा है, ये व्यक्ति तो पतित जीवात्मा। दूसरे प्रकार के साधु जो दोष नहीं देखते केवल गुण देखते हैं। तीसरे प्रकार के साधु जो गुण को देखते हैं और एक गुण को देखकर उसको बहुत बढ़ा देते हैं कि कितना महान, कितना महान, उसकी बहुत प्रशंसा करते, एक गुण भी मिल जाए। और चौथे प्रकार के साधु हैं जो सर्वश्रेष्ठ साधु माने गए हैं कि वो व्यक्ति में केवल गुण देखते हैं, व्यक्ति में गुण देखते हैं, उस व्यक्ति में जिसमें गुण है ही नहीं उसमें भी वे लोग गुण देख लेते हैं, ये श्रेष्ठ साधु कहे गए। तो पहले प्रकार के साधु जो दोष देखते हैं लेकिन ये सोचते हैं कि इसको कैसे गुणों में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के साधु दोष देखते ही नहीं है, केवल गुण देखते हैं। तीसरे प्रकार के साधु गुण तो देखते हैं लेकिन उस एक गुण को भी बहुत बड़ा करके बताते हैं। और चौथे प्रकार के साधु उस व्यक्ति में भी गुण देख लेते हैं जिसमें कोई गुण है ही नहीं, अर्थात वे सबको समान देखते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद के पास एक समय प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे, एक व्यक्ति आया, नशे में था, आंखें लाल, आकर ऐसे खड़ा हो गया, देखने लगा क्रोध में, सब लोग देख रहे हैं क्या करने वाला है। ये पाश्चात्य जगत में उस समय प्रभुपाद ने प्रारंभ किया था, और फिर वो चलकर आया प्रभुपाद के पास, सब देख रहे हैं, और वहाँ पर एक छोटी टेबल थी, तो उसने वहाँ पर जो टॉयलेट में पेपर यूज़ करते हैं वो रख दिया, टॉयलेट पेपर। टॉयलेट पेपर मतलब भारत में तो यूज़ नहीं करते हैं लेकिन पाश्चात्य जगत में भागवतम में कहना नहीं चाहिए, तो खैर वे लोग टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, तो वो टॉयलेट पेपर लाकर रख दिया। अब बताइए कोई और होता तो कितना गुस्से में आता। और जब वो चला गया, रख के चला गया, घूम गया चला, प्रभुपाद ने कहा देखो कितना अच्छा सेवा भाव है, कुछ भगवान के लिए लेकर आया। ये साधु है, जिसके अंदर गुण नहीं भी है उसके अंदर भी गुण देख लेते हैं कि देखो कितना अच्छा सेवा भाव। तो ऐसे ये साधु हैं। तो माता सती कह रही हैं सती देवी कि आप ही जैसा व्यक्ति शिव जी के अंदर, जो शिव जी इतने बड़े स्तर पर हैं, उनके अंदर गुण देख सकते हैं। और फिर वो कहती हैं कि हाँ अच्छा है, जो भौतिकवादी है ना उसको गुण देखना चाहिए, दुर्गुण देखना चाहिए, अच्छा है उसके लिए। क्यों अच्छा है? क्योंकि जल्दी पतन होगा उसका। सती देवी कहती है, देखिए किस तरह कि अच्छा है, दुर्गुण देखने चाहिए, जल्दी पतन होगा। और फिर वो कहती हैं इस चीज को कहने के बाद कि क्या आप सोचते हो कि इतने बड़े बड़े महान लोग जैसे ब्रह्मा जी, वो जानते नहीं है शिव कौन है? आपने कह दिया कि वो राख लगा के घूमता है, ये करता है, वो करता है, शमशान में रहता है। अरे ब्रह्मा जी उनके चरणों की धूल अपने सर पर लगाते हैं, इतनी महान, इतने महान हैं शिव जी, और आप उनकी निंदा कर रहे हैं। तो क्या आप ये सोच रहे हो ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हुआ? ब्रह्मा जी जिनके चरणों की धूल अपने सर पर लगा सकें, उस व्यक्ति की आप निंदा कर रहे हो? सबके सामने सती देवी डांट रही है अपने ही पिता। तो भगवान या भगवान के भक्तों की जो चरण धूल है, प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं कि यही चरण धूल, जो चरणों की धूल है, वो हमारे लिए प्रगति का भी मार्ग बन सकती है, नाश का भी। अगर सही भाव से चरण धूल को ग्रहण ना किया जाए तो फिर वो नाश का कारण बनेगी। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं सूर्य का। प्रभुपाद कहते हैं सूर्य की किरणें बड़ी तेजी से पड़ती हैं, तो कुछ जो पेड़ होते हैं वो सूख जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ उस गर्मी को पाकर खिल उठते हैं। तो कैसे उन्होंने उस गर्मी को लिया, इसके आधार पर प्रभाव होता है। तो कैसे हम भक्तों के चरणों की धूल को ग्रहण करते हैं, इसके आधार पर हमारे ऊपर प्रभाव होता है, हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं या फिर हमारा नाश हो सकता है। क्यों? अगर गलत भाव से स्वीकार किया, उनके उपदेशों को, उनके निर्देशों को ग्रहण नहीं किया, तो फिर नाश होगा, भक्त के साथ रहकर भी कोई लाभ नहीं है। तो ऐसा कहने के बाद माता सती कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक निंदा करता है वैष्णवों की, भक्तों की निंदा करता है, तो क्या करना चाहिए? तो कहती हैं कि या तो जिह्वा काट देनी चाहिए उसकी, या मर जाना चाहिए खुद, या फिर वहां से चले जाना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जो क्षत्रिय होते हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य है रक्षा करना, अगर कोई क्षत्रिय वैष्णव की निंदा सुनता है तो उसको निंदा करने वाले की जिह्वा को काट देना चाहिए। अगर कोई वैश्य और शूद्र निंदा को सुनता है तो उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और अगर कोई ब्राह्मण सुनता है निंदा को तो उसको अपने कानों पर हाथ रख के वहां से चले जाना चाहिए। तो सती देवी ने ये तीनों चीजें समझाई। वैष्णवों की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए, करनी तो चाहिए ही नहीं, वो तो कहने की बात नहीं है, सुनना भी नहीं चाहिए। कभी कोई दो लोग आपस में बैठे हुए किसी वैष्णव की निंदा करते रहते, हमें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि हमारे कान निंदा सुनने के लिए लालायित हैं। क्योंकि निंदा सुनने का अर्थ जानते हैं आप, अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रशंसा है वो। जब हम किसी की निंदा करते या किसी की निंदा सुनते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारी प्रशंसा का भाव आता है। क्यों? मान लीजिए हमने सुना, जानते हो व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया, ओ ऐसा किया, इतना बेकार आदमी है, पता नहीं था मुझे। मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम कितने अच्छे हैं, हमने नहीं किया, उसने किया, हम बहुत अच्छे हैं। तो निंदा ये अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रशंसा है, इसीलिए कानों को बड़ी अच्छी लगती है दूसरे की निंदा, अपनी निंदा नहीं। दूसरे की निंदा बड़ी अच्छी लगती है हमारे कानों को। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से हमारी प्रशंसा। अगर कोई व्यक्ति आके आपको कह रहा है कि फला फला भक्त ने ऐसा गलत काम किया, मतलब वो आपको बता रहे कि आपने नहीं किया, आप कितने महान हो। हम इस तरह से लेते हैं निंदा को, इसीलिए भक्तों की, और जब वैष्णवों की वो निंदा हो तो वो बहुत खतरनाक है। तो हमें सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुनने से हम अपराध कर बैठते हैं। वैष्णवों के प्रति हम लोग हम रविवार को चर्चा कर रहे थे, शची माता ने मन में अपराध कर दिया था द्वैत आचार्य के प्रति, सीधे नहीं किया था, बोला नहीं था, मन में केवल सोच लिया था कि अद्वैत आचार्य के कारण मेरा लड़का संन्यास ले चुका है, बस चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो वैष्णवों के प्रति अपराध से बहुत बचना चाहिए, इसीलिए हमें सुनना नहीं चाहिए। अगर हम कभी निंदा सुन लेते हैं तो फिर आगे चलकर हमारे मन में वो अपराध का बीज बैठ जाता है और हम अपराध निश्चित करते हैं फिर। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के विषय में सुन लिया कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा करता है और आपने विश्वास कर लिया, और फिर थोड़े समय बाद कुछ आपने अलग करते हुए देखा उस व्यक्ति को, तो आपको याद आएगा हाँ उसने कहा था ये ऐसा ही है। बस निंदा सुनने से निंदा करने तक हम पहुंच जाते हैं, इसीलिए सुनना नहीं चाहिए वैष्णवों की निंदा। तो सती देवी ऐसे कहती हैं और फिर वो कहती हैं कि आप कहते हैं कि शिवजी वैदिक नियमों का पालन नहीं करते, तो आप जान लीजिए शिवजी इन नियमों के परे हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है नियम पालन करने की। जो व्यक्ति भक्ति में इतना ऊंचा हो शिवजी के समान, उसको क्या आवश्यकता है वैदिक नियमों के पालन करने की। आराधितो यदि हरिम तपसा तत्किम, न आराधितो यदि हरिम तपसा तत्किम, अंतर बहिर यदि हरिम तपसा तत्किम, न अंतर बहिर यदि हरिम तपसा तत्किम। नारद मुनि कहते हैं कि अरे जो व्यक्ति पहले से ही भगवान की भक्ति में इतना लगा हुआ है, उसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता। तपस्या का तो उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, और शिव जी जैसे महान लोगों ने जिन्होंने भगवान को पहले ही प्राप्त कर लिया, उनके लिए नियम क्यों होंगे। तो वैदिक नियम, और उदाहरण देती हैं कि जैसे अगर कोई कहे नहीं सबके लिए समान नियम होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो नियम समान होना चाहिए, तो वो कहती हम इस जगत में ही देखते हैं, देवता आकाश में विचरण करते हैं और मनुष्य पृथ्वी पर, क्या उनको समान कहा जाता है, क्या उनको कहा जाता है कि नहीं दोनों को पृथ्वी पर चलना होगा। क्यों देवताओं को नहीं कहा जाता कि पृथ्वी पर चलिए, उनके लिए आवश्यकता नहीं है, उनका स्तर ऊंचा हो चुका है, वे आकाश में विचरण करते हैं, लेकिन मनुष्यों का स्तर नहीं हुआ इसीलिए पृथ्वी पर करते हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति वैदिक नियमों के परे चला गया है, नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके लिए आवश्यक नहीं है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये सोचने लगे कि मैं बहुत समय से भक्ति कर रहा हूं, मैं वैदिक नियमों के परे चला गया हूं, मुझे वेदों के नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर के नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत श्रेष्ठ हो चुका हूं। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो माया में है, सरल है, बस वो माया में है, क्योंकि माया देवी उसको समझा रही है कितने साल हो गए भक्ति करते हुए, अब तो आप बहुत श्रेष्ठ हो गए, वरिष्ठ हो गए, जरूरत नहीं है, अभी आप जो चाहें कर सकते हैं, अब आप स्वतंत्र हैं, अब कोई नियम आपको बांधता नहीं है। माया है। हाँ, लेकिन शिवजी स्वयं ये नहीं सोचते कि मुझे नियम के पालन की आवश्यकता नहीं, लेकिन शिवजी की स्थिति ऐसी है कि उन्हें नियम की आवश्यकता नहीं। जैसे माधवेंद्रपुरी एक श्लोक में लिखते हैं संध्या वंदन नमस्तोभ्यम, भगवान की ये जो संध्या वंदन, ये तीन बार गायत्री का जाप करना नमस्तोभ्यम नमस्कार है, भगवान की पूजा अर्चना नमस्कार है, मुझे कोई आवश्यकता नमस्कार है मतलब आप चले जाइए। क्यों? क्योंकि उनका मन पहले से ही यदवधि मम चित्त कृष्ण पदार विंदो, उनका तो चित्त कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ है, अब जो 24 घंटे कृष्ण का स्मरण कर रहा है उसको गायत्री मंत्र जप करने की क्या आवश्यकता। वो कृष्ण का स्मरण छोड़ के वो गायत्री करे, क्या आवश्यकता है उसको, क्योंकि गायत्री करने का उद्देश्य है कृष्ण का स्मरण, और जो कृष्ण का स्मरण कर रहा है 24 घंटे, वो स्मरण को तोड़कर फिर नियम नहीं पालन करेगा। तो इसीलिए माधवेंद्रपुरी कहते हैं संध्या वंदन नमस्तुभ्यम, आप दूर रहो मुझसे, मुझे समय नहीं है। वो ये नहीं कहते कि मेरे लिए आवश्यकता नहीं है, मुझे समय ही नहीं है मेरे पास, मन कृष्ण में लगा है, कहां मैं ये सब करूं। तो ये सती देवी समझा रही है कि शिवजी इन सब के परे हैं। और उसके बाद वो कहती हैं कि मैं अब इस शरीर को त्यागने वाली हूं। क्यों? क्योंकि ये शरीर आपसे आया है, आप मेरे पिता हैं, आपने वैष्णवों की निंदा की, मेरा कर्तव्य था कि मैं आपको मार डालती, लेकिन मैं मार नहीं सकती क्योंकि आप मेरे पिता हैं, इसलिए अपने ही शरीर को मैं त्याग रही हूं। और उस समय सती देवी ने, ऐसा वर्णन है कि भगवे वस्त्र धारण किए। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भी कोई मरना चाहता है वो पहले भगवे वस्त्र धारण करता है। तो भगवे वस्त्र धारण करने का अर्थ क्या है? सामाजिक तौर से आत्महत्या। अर्थात जब हम भगवे वस्त्र धारण करें तो ये जान लेना चाहिए कि हम समाज के लिए, अपने अपने परिवार, अपने समाज इत्यादि के लिए मर चुके हैं। हमारा वो जीवन समाप्त हो गया, वो भौतिक जीवन, वो आसक्ति का जीवन, वो पारिवारिक जीवन समाप्त हो गया। तब व्यक्ति को सैफरन पहनना चाहिए। कभी कभी लोग शौक में सैफरन पहन लेते हैं, लोगों को अच्छा लगता है सैफरन पहनना, तो शौक में नहीं। जिस दिन ये भाव आए तो सैफरन पहनने का अर्थ ये है कि अब के बाद मृत्यु, और मरा हुआ व्यक्ति फिर वापस नहीं आता है ना, मरा हुआ व्यक्ति फिर वापस नहीं आता। तो इसलिए सैफरन का अर्थ है कि हम मर चुके हैं समाज के लिए, अब केवल कृष्ण के लिए जीना है। ये सही दृष्टि में सैफरन पहनने का अर्थ है कि समाज के लिए, भौतिक चीजों के लिए, परिवार के लिए, आसक्तियों के लिए, भोग के लिए मर चुके हैं, लेकिन कृष्ण के लिए केवल जी रहे हैं। तो इसी प्रकार सती देवी ने सैफरन कपड़े धारण कर लिए और वो अब अपनी मृत्यु के पास जा रहे हैं, वो अब शरीर को त्यागने वाली हैं। तो इस प्रसंग से हम लोग ये सीखते हैं कि देखिए कैसे हमें वो व्यक्ति जो वैष्णवों की निंदा करता है उससे दूर रहना चाहिए, उसके संग में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो नाश होगा। तो अपने शरीर को क्यों त्याग रही हैं? क्योंकि वो कहती हैं कि ये शिवजी कभी कभी मुझे दक्षिणी कहते हैं। दक्षिणी यानी तुम्हारा जन्म दक्ष से हुआ है। अभी तो वो शब्द सुनकर मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपसे संबंधित हूं, आप जैसे वैष्णव अपराधी से संबंधित हूं, इसीलिए इस शरीर को त्याग रहे हैं। तो हमें अगर गलती से ऐसा हो जाए कि हमें किसी ऐसे अपराधी का संग करना पड़े तो हमें भी शरीर को त्याग देना चाहिए। दूसरी दृष्टि में मानसिकता को त्यागना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं ब्रह्मा जी की, हम लोग कथा पढ़ते हैं तो कई बार देखते हैं ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग दिया और फिर आगे कथा चलती है। तो शरीर को त्याग दिया मतलब ब्रह्मा जी तो मर गए, फिर कैसे उन्होंने रचना की? मानसिकता को त्याग दिया, अर्थात हमें उस मानसिकता को, उस अपराध करने की मानसिकता को तुरंत त्याग देना चाहिए। तो ऐसे सती देवी अपने शरीर को त्याग रही हैं। फिर उन्होंने योग क्रिया, वो सही आसन में बैठ गई, योग क्रिया के द्वारा अपनी जो प्राण वायु है उसको ऊपर की ओर लाएं। ये एक क्रिया होती है योगियों के लिए। योगी जब चाहें अपने शरीर को छोड़ सकते हैं, तो अपनी प्राण वायु को ऊपर की ओर लाते हैं, षट चक्र होते हैं, इसको षट चक्र क्रिया कहते हैं। तो प्राण वायु को ऊपर लाते हैं, धीरे धीरे यहाँ भौहों के बीच में आता है और फिर ऊपर रंध्र से उसको निकाल देते हैं, अपनी आत्मा को निकाल देते हैं, प्राण को निकाल देते हैं। तो इसी प्रकार सती देवी ने षट चक्र क्रिया के द्वारा अपने प्राण वायु को ऊपर किया, अग्नि का स्मरण किया, अग्नि प्रकट हुई और फिर सती देवी ने सबके सामने देखते देखते, दक्ष भी देख रहा था लेकिन रोका नहीं दक्ष ने। देखिए कितना कितना व्यक्ति जब अपराध करने बैठता है, ठीक है मान लिया कि उसने, सती उनको कुछ कह रही थी वो चुप रहा, लेकिन जब उसने देखा कि सती अपने देह को त्याग रही है, मर रही है खुद, मेरी पुत्री, इतना द्वेष हो गया कि उस समय भी गया नहीं, भाग कर रोका नहीं। अगर उस समय भी शायद सती को जाकर क्षमा मांग लेता तो सती क्षमा कर देती कि चलो रहने दो, छोड़ो, मेरे से गलती हो गई, मैं शिवजी से जाकर अपराध की क्षमा मांग लूंगा, चलो लेकिन उस समय भी उसने रोका नहीं। देखिए कितना द्वेष हो सकता है व्यक्ति का, अपनी ही पुत्री मरने जा रही, अपने आप को जला रही है आपके कारण, लेकिन आप वहां खड़े हुए जाकर उसको रोक नहीं रहे हैं क्योंकि उसके पति से द्वेष करते हैं। ये द्वेष कितना खतरनाक है द्वेष। तो सती देवी ने अपने को जला दिया, खत्म कर दिया। और जैसे ही सती ने जलाया, अंतिम भाग इस अध्याय का जो 28वें श्लोक से आगे जाता है कि सारे लोग हाहाकार मच गया कि ये क्या हुआ, सती देवी ने अपने देह को इस तरह से क्यों छोड़ा। सब निंदा करने लगे दक्ष की कि देखो दक्ष, अरे रोका भी नहीं अपनी पुत्री को, वो मर रही है, आत्महत्या कर रही है और रोका भी नहीं, इतना ये द्वेषी हो गया, इसको तो इसका फल मिलेगा, इसका नाश होगा, सब कहने लगे वहां पर। उस समय सारे ब्रह्मांड में ये बात फैल गई कि कैसे ये हो गए। और जो सती देवी के, दरअसल जब ऐसा हुआ था, दक्ष ने जब अपमान किया, शिव जी का नाम नहीं लिया, तो सती को क्रोध आया। तो जो उनके अनुचर आए थे शिव जी के, तो उन्होंने देख लिया कि सती देवी को क्रोध आ रहा है, तो वो सब भागे कि अभी हम दक्ष को मार डालते हैं, दक्ष को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि अपमान सहन नहीं करना चाहिए, तो हम मार डालते हैं। तो उस समय सती देवी ने रोक दिया था कि नहीं, क्योंकि सती नहीं चाहती थी कि मैं यहां पर आई हूं और इतना विध्वंस हो। तो उन्होंने कहा अच्छा है, मैं ही अपने प्राण दे देती हूं। लेकिन जब आप प्राण दे दिए, तब अनुचर रुक नहीं सके, तो भागे दक्ष को मारने के लिए। उनको इतना क्रोध आया कि देखो दक्ष के कारण सती का नाश हो गया, शिवजी का अपमान कर दिया, अब इसको मार देना चाहिए। क्योंकि अनुचरों ने सोचा कि हम तो वैसे भी मरने वाले हैं, हम सती को रोक नहीं पाए मरते हुए, तो हमारे लिए तो मृत्यु के समान है, लेकिन मरने से पहले दक्ष को मार के जाएंगे। तो सारे भागे दक्ष को मारने के लिए। और उस समय भृगु मुनि ने देख लिया कि ये ब्राह्मणों पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत आहुतियां अर्पण की यज्ञ में। देखिए मंत्र की शक्ति ब्राह्मणों की, मंत्र से उन्होंने आहुतियां अर्पण की और उस अग्नि से वहां से फिर ऐसे देवता प्रकट हुए जिनका नाम रिभु था। रिभु नाम के सैनिक देवता सब प्रकट हो गए और उन्होंने आक्रमण कर दिया शिवजी के अनुचरों पर, और शिवजी के अनुचरों को भागना पड़ा, वहां से भाग गए से। प्रभुपद लिखते हैं देखिए ब्राह्मणों के मंत्र की शक्ति कितनी थी। आजकल कलयुग में है नहीं ऐसा, केवल मंत्र की शक्ति से उन्होंने प्रकट कर दी, अपनी रक्षा कर ली ब्रह्म तेज से। तो फिर सारे शिवजी के अनुयायी भाग गए वहां से। तो अब आगे की कथा अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि जब शिवजी को यह पता चला तो शिवजी के ऊपर क्या प्रभाव हुआ, और फिर आगे कैसे कथा चली, ये आगे के अध्यायों में वर्णन होगा।